भक्त कहकर नहीं पुकारेंगे, अब लोग मुझे प्रभु कहेंगे, लोग प्रभु कहेंगे। मैं नहीं कह रहा कि ये प्रवृत्ति होगी, परंतु आशा कभी कभी आकांक्षा होती है ये सब चीजों की। तो महाराज बोल रहे थे कि इसके वजह से कोई व्यक्ति को गुरु नहीं अपनाना चाहिए, और कुछ वर्ष पहले उड़पी में महाराज ट्रीटमेंट के लिए गए थे, तो वहां पर एक रात ऐसा हुआ, महाराज को पेट की तकलीफ थी, बहुत गैस उत्पन्न होती थी और पेट में अल्सर से महाराज, अल्सर्स कहते हैं जो छोटे छोटे फोड़े जैसे होते हैं और बहुत तकलीफ देते हैं। तो रात्रि का समय था, जिस बंगले में महाराज रुके थे, तो मैं उस बंगले में था महाराज की सेवा में। तो रात को 1:30 बजे महाराज अपने कॉरिडोर में घूमकर जप कर रहे थे, तो मेरी आंख खुली, 1:30 बजे रात को महाराज जप कर रहे हैं, तो मैं उठकर आया और पूछा कि सब ठीक है। तो महाराज बताने लगे कि पिछले 3 घंटे से मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो पेट का जो अल्सर है, वो जो गैस उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह से एसिडिटी और सर दर्द और बिल्कुल नींद नहीं है। तो मैंने पूछा मैं कुछ कर सकता हूं, तो महाराज बोले नहीं, केवल बैठो, थोड़ा जप करते हैं। तो जप कर रहे थे, तो मैंने कहा महाराज, सत्स्वरूप महाराज वो अपनी किताब में लिखते हैं कि गुरु को जब कोई शारीरिक तकलीफ होती है तो उसके कई कारण हैं। एक कारण है कि गुरु शिष्य को सिखाते हैं कि इस शरीर में आसक्त मत रहो, और वो अपने उदाहरण से सिखाते हैं। और दूसरा कारण वो लिखते हैं कि जब शिष्य दीक्षा लेता है तो शिष्य जो है अपना कर्म गुरु के ऊपर डालते हैं, और गुरु जो है वो स्वेच्छा से शिष्यों के सारे कर्म ले लेते हैं। इसीलिए ये कारण है कि गुरु की जो शारीरिक अवस्था है वो उस प्रकार से देखी जाती है। तो मैंने जब कहा तो महाराज ने कहा कि तो मुझे फिर दीक्षा देना बंद करना चाहिए। और ये 2-3 साल पहले की बात है, क्योंकि यदि मेरा शरीर मेरे साथ नहीं रहेगा तो जो मेरे शिष्य हैं उनकी सेवा में क्या कैसे कर पाऊंगा। तो मैं तो चुप हो गया, मैं क्या कहूंगा। तो महाराज गए, परंतु श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा है कि जो इस संप्रदाय में अपना संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए शायद मुझे और भी कर्म लेने होंगे। और वो कह रहे थे कि ये पेट में मेरे जो अल्सर्स हैं, ये हो सकता है एक एक अल्सर ये सब कर्मों का प्रतीक हो। तो फिर उन्होंने कहा, परंतु जो काउंसलर होते हैं वो तो शायद देखते होंगे कि जो प्रामाणिक हैं वही दीक्षा ले रहे हैं मुझसे। मैंने कहा हाँ, तो परखा जाता है, परंतु कुछ हद तक। अब जैसे हम जब किसी को पूछते हैं कि आप कब से 4 नियम पालन कर रहे हैं, कब से 16 माला कर रहे हैं, तो कहते हैं अब हमारे पास कोई मन का डिटेक्टर तो नहीं है जिससे हम जान सकें कि जो कुछ कहा है वो सच कहा है कि नहीं। तो इसलिए ये जान लेना चाहिए कि जप सभी कोई कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कोई नियम नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया। परंतु यदि कृष्ण को शरणागत होना है तो गुरु की आवश्यकता है। जप कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि जितना ज्यादा मैं प्रामाणिक रहूंगा और ईमानदार रहूंगा, ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि केवल दीक्षा के कुछ दिन पहले या दीक्षा के कुछ दिन बाद। कई बार देखा जाता है कि कभी दीक्षा मिलने वाली है तो सारे जो नियम हैं और जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब एकदम एंथुजियाज्म और उत्साह के साथ पालन हो रहा है। ये वैसी स्थिति है जैसे किसी ने पढ़ाई नहीं की पूरे साल भर और एग्जाम के कुछ 15 दिन पहले जब सर के ऊपर इतना प्रेशर है तो किताब खोलकर कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रकार की भक्ति नहीं होनी चाहिए हमारे। ठीक है, यदि 3 साल जो हमने जप किया और 4 नियम पालन किए उसमें कुछ हमारे बिना इच्छा के बिना नियंत्रण के यदि कुछ गलतियां हो गई हों, परंतु यदि हम ईमानदार रहे थे, अब जो हम गुरु को अपनाए हैं अपने जीवन में, तो अब समझ लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, एक उनके शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद कि प्रभुपाद जब शिष्य नियमों का पालन नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा, तो दीक्षा क्यों ली? यदि नियम का पालन नहीं करना था तो दीक्षा क्यों ली? और प्रभुपाद ने कहा, ओनली अ जेंटलमैन विल स्टिक टू हिज वर्ड। जो एक सुसंस्कृत व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने नियमों को दृढ़ता से पालन करेगा। इसका अर्थ क्या है कि जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहा, ये नहीं कि वो जानता नहीं, जानता है सब कुछ, और ये नहीं उसके अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति है। तो एक बार महाराज कह रहे थे कि जैसे हम इस भौतिक संसार में अपने आप का जीवन यापन करने के लिए क्या कुछ त्याग नहीं करते, कुछ पैसे कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए क्या कुछ त्याग नहीं करते, और चाहे कुछ भी हो जाए वो करना पड़ता है, नहीं तो जिएंगे कैसे? तो महाराज ने कहा, उसी प्रकार से एक शिष्य जो है सबसे पहला, हालांकि जो प्रेम से सेवा करता है गुरु की वो तो ऊंचा स्तर है, परंतु सबसे पहले इस स्तर पर तो आना चाहिए हमें कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मैंने व्रत लिया है, और प्रभुपाद जी ने भी कहा कि व्रत लिया था गुरु के सामने, डीटीज के सामने, विष्णु यज्ञ के रूप में, विष्णु के सामने और भक्तों के सामने। तो हर समय याद रहना चाहिए कि मैं कहीं पर भी रहूं, हर समय गुरु मेरे बगल में मेरे हरकतों को देख रहे हैं और चैत्य गुरु मेरे हृदय में मेरी जो जो इच्छाएं हैं और जो मेरी योजनाएं हैं वो सब जानते हैं। ये मत समझना कि हम केवल डराने के लिए सब कह रहे हैं। आप सब प्रामाणिक हैं, परंतु आप अपने अंदर ये जान लीजिए कि गुरु को अपनाना ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है, क्योंकि ज्यादातर भारत में अन्य जो तथाकथित गुरु हैं वो तो कोई टैक्सी ड्राइवर या हाथ गाड़ी वाला, सभी मेरे भी ये गुरु हैं, मेरे ये गुरु हैं। और नियम क्या है? नियम तो कुछ बताया नहीं गुरु ने, परंतु यहां पर जैसे गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एक शिष्य को इस भौतिक संसार से बाहर निकालने की, उसी प्रकार से एक शिष्य का उत्तरदायित्व है कि वो गुरु का जो नाम है, देखिए तीन स्तर हैं गुरु का नाम रखने के। एक है कि हमारे वजह से गुरु का नाम और ऊंचा हो, तो सबसे अच्छा स्तर है कि हमारे वजह से गुरु का नाम और ऊंचा हो। जैसे हमारे नित्यानंद प्रभु नाम के ब्रह्मचारी हैं, तो वो अपने घर गए बहुत वर्षों पश्चात। तो जब घर गए तो उनके एक टीचर से मिलने आए उनको, तो एक प्रोग्राम अरेंज किया था, प्रोग्राम में उनके टीचर आए थे। तो टीचर इनका प्रवचन सुन रहे थे, अब ये प्रवचन दे रहे थे और वो टीचर बैठकर सुन रहे थे। पहले ये सुनते थे क्लास में उनको, अब वो टीचर बैठकर सुन रहे थे। तो प्रवचन के पश्चात फिर वो टीचर को कुछ कहने के लिए दिया गया। वो टीचर ने कहा कि पहले ये जब मेरी क्लास में था तो इसका परिचय क्या था? परिचय था कि ये मेरी क्लास का स्टूडेंट है, ये परिचय इसका हुआ करता था, क्योंकि उस स्कूल के वो माने हुए टीचर थे, तो ये परिचय था। और मेरा परिचय अभी यदि कोई पूछे तो मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इस व्यक्ति का टीचर रहा जो अब इतना प्रगति कर दिया है। तो ये एक स्तर होता है कि शिष्य के वजह से गुरु का नाम और ऊंचा हो। और एक है कि शिष्य के वजह से गुरु का नाम वैसा का वैसा, कुछ उसमें हमने हानि नहीं पहुंचाई और कुछ बढ़ाया भी नहीं उसके अंदर। परंतु तीसरा होता है कि शिष्य के वजह से जब गुरु का नाम बदनाम होता है, तो हमारे एक डिवोटी एक बार व्यास पूजा में कह रहे थे कि ये जो राधा गोपीनाथ मंदिर जब शुरू हुआ उस समय तो मैं था नहीं यहां पर, और अभी जो राधा गोपीनाथ मंदिर जो इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है मेरे वजह से तो नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा, आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द क्रिएशन, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस, आई ओनली प्रे दैट आई डू नॉट बिकम वन ऑफ द रीजंस फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन। मैं खाली यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं ये कारण न बनू कि राधा गोपीनाथ की जो प्रगति चल रही है राधानाथ महाराज की वजह से, इसमें मैं कोई कंटक बनू या विनाश का कारण बनू, तो वो तो सबसे निम्नतर स्तर है। तो कम से कम हमारे उदाहरण से, हमारे कर्मों से उतना तो नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अमेरिका में थे तो लोग राधानाथ महाराज की डिसाइपल्स की मीटिंग हुई थी, तो वो पूछ रहे थे कि हम क्या सेवा कर सकते हैं महाराज के स्वास्थ्य के लिए, क्या प्रार्थना कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। ज्यादातर भक्त जो हैं वो आकर यही चिंता व्यक्त करते हैं कि महाराज का स्वास्थ्य कैसा है, सुधरा है कि नहीं। तो मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि आप लोग सब एक ही चीज कर सकते हो कि जो उन्होंने नियम बताए हैं वो नियम यदि हम दृढ़ता से पालन करें तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। बस इतना अगर हम कंट्रीब्यूशन करें तो बहुत है उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, क्योंकि न तो हम कुछ दवाई दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अवश्य, परंतु वो प्रार्थना में कुछ सब्सटेंस रहेगा यदि हम नियमों का पालन करेंगे, नहीं तो वो प्रार्थना वो एक जो खाली गोली होती है बिना बारूद की उसके समान है। तो यहां पर तो ये सारे जो नियम निर्धारित किए हैं इन नियमों में से ये जो 16 माला है यहां पे ये समझना चाहिए कि 16 माला खत्म नहीं करनी हमको रोज, चैंटिंग एटलीस्ट 16 राउंड्स उसका जप करना है और उसका जप ध्यान पूर्वक करना है। ऐसा नहीं कि कैसे तो मुझे 12 बजे से पहले मेरा जो 16वां पीर है वो नीचे करना है तो हो गया। आज का एक दिन का गुरु के प्रति का नियम पूरा हो गया। तो उस प्रकार से 16 माला का जप नहीं, दीक्षा से पहले ठीक है यदि हम जो जप हैं वो ठीक है, इतना ध्यान पूर्वक न होता हूं ठीक तो नहीं है, परंतु उसका सीरियसनेस इतना नहीं माना है, परंतु गुरु एक बार अपना लिया तो हमें प्रयास करना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए जो हमारा 16 माला जप है वो छोड़ना तो है ही नहीं, परंतु वो 16 माला जप ध्यान पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग करते समय और कुछ और कार्य करते समय या कई बार देखा जाता है कि कुछ वर्षों पश्चात माला तो कबोर्ड में रहती है और केवल काउंटर पे होता है माला। तो गुरु जो माला दे रहे हैं वो कबर्ड में रखने के लिए नहीं है, उसमें शक्ति है क्योंकि उन्होंने जप किया है उसके ऊपर। तो उस माला के ऊपर जप करना 16 माला, 16 माला के आगे यदि कोई व्यक्ति ये सब काउंटर और ऐसे जप करे तो अलग बात, परंतु दीक्षित भक्त को जो 16 माला है वो माला के ऊपर करना चाहिए। और यहां पे तीसरा नियम है शोइंग सीरियस कमिटमेंट टू श्रील प्रभुपाद मूवमेंट। अब इसका अर्थ है कि हमें ये जो इस्कॉन संस्था है और इसका जो तत्व ज्ञान है इसके प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु की शरण ग्रहण की है और उसके साथ और भी हमारे मत हैं कि हमारे अनुसार अभी यदि घर में हम गणपति की पूजा, इसके विषय में बहुत डिस्कशन हुआ मुंबई में कि कई बार देखा जाता है कि दीक्षा के बाद भी घर में और भी देवी देवताओं की पूजा चल रही है। पहले से ही समय इतना कम है इस मनुष्य जीवन में और उसके ऊपर यदि हम अपने मन को भ्रमित करें और अन्य देवी देवताओं की आराधना करने में तो उससे एक सिग्नल हम क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि मेरे जीवन में गुरु और इस्कॉन और ये जो गुरु परंपरा है, ये जो संप्रदाय है, ये एक पार्ट टाइम एंगेजमेंट है, तो वो भी है मेरे ऑल्टर पर, और उनके साथ साथ क्योंकि जो मुझे इनसे नहीं मिल सकेगा वो मैं इनसे मांग लू, क्योंकि ये तो सब शुद्ध भक्ति देने वाले हैं। तो अभी मेरा जो कुछ वर्ष है जिसमें मुझे तुरंत शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए, अभी मेरे जीवन को चलाने के लिए मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो मुझे ये सब देवी देवता देंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। यहां पर इसका अर्थ ये है, सीरियस कमिटमेंट, पूर्ण प्रकार से शरणागति इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रति और अहित की भक्ति के प्रति। अन्य अभिलाषित शून्यम, सब शून्य होना चाहिए, बाकी सारी अभिलाषा। और ये जो तीन आगे के नियम हैं, ये राधानाथ महाराज स्वयं बहुत इसके ऊपर जोर दिए जब उन्होंने ये मीटिंग ली वहां पर मुंबई में। तो ये नियम है, सबसे पहला इसमें, स्ट्रांगली अपीयर टू नेवर इन फ्यूचर बी इंक्लाइन टू लीव देयर वाउज एंड सर्विस टू इस्कॉन। स्ट्रांगली अपीयर टू नेवर इन द फ्यूचर बी इंक्लाइन टू लीव देयर वाउज एंड सर्विस टू इस्कॉन, कि ऐसी धारणा आनी भी नहीं चाहिए, करना तो दूर की बात है, ऐसी धारणा भी नहीं आनी चाहिए कि आगे चलकर, अभी ठीक है अभी इस्कॉन से मुझे कुछ सीखने मिल रहा है तो अभी मैं गुरु ले लेता हूं, और आगे चलकर यदि मुझे और कुछ मिल जाए इससे भी ऊंचा तो मैं वहां पर चला जाऊंगा। तो यदि किसी के अंदर ऐसी धारणाएं हैं, महाराज ने कहा वो व्यक्ति और कहीं पर जा सकता है। ये समझ में आया सबको? और पांचवा नियम, इसके ऊपर भी बहुत महाराज ने जोर दिया, वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिवोटी सत्संग। देखिए यहां पर एक एक शब्द चुनकर दिया गया कि जो मंदिर का सत्संग है, जैसे यहां पर नासिक में जो सत्संग होता है वो है हमारा शनिवार का कार्यक्रम और रविवार का यहां का कार्यक्रम, और जितने भी यहां पर हम उत्सव मनाते हैं, गौर पूर्णिमा हुआ कल, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं कि केवल एक अटेंडेंस लगाने के लिए हम आ गए, कि प्रोग्राम के अंत में लोगों को अपना मुंह दिखा दिया कि मैं आया हूं तो मेरे विषय में कुछ चर्चा मत करना, और यदि कोई पूछे कि प्रोग्राम में बहुत दिन से नहीं आए तो मैं पिछले संडे अपना चेहरा दिखा दिया। एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग का अर्थ है कि हमें भाग लेना चाहिए उस सत्संग का, और हम आशा करते हैं कि यहां पर इस नासिक कॉन्ग्रीगेशन में जो भी दीक्षित हैं वो कुछ सेवा का उत्तरदायित्व लें, तो सेवा का उत्तरदायित्व लेंगे तो इसमें हम भाग भी ले रहे हैं सत्संग में एक्टिवली, और अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं इस फॉर्म के प्रति, क्योंकि जो दीक्षित भक्त हैं वो स्पेक्टेटर्स नहीं होने चाहिए। जैसे किसी स्टेडियम में लोग कोई मैच देखने जाते हैं तो केवल बैठकर, जैसे एक स्पेक्टेटर बैठकर देखता है वैसे वो होते हैं पैसिव, उनको पैसिव प्लेयर्स कहा जाता है। तो दीक्षा के बाद हमारा जो पार्टिसिपेशन है, हमारा जो योगदान है इस संप्रदाय के प्रति, वो एक्टिव होना चाहिए कि हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं प्रभुपाद के मिशन के लिए। एक मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए। और प्रभुपाद का मिशन क्या है? प्रचार। तो मैं प्रभुपाद के इस प्रचार के आंदोलन में कितना योगदान दे रहा हूं। जैसे महाराज ने एक प्रवचन में कहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए केनेडी, और उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था अमरीकियों को, डोंट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ये मत पूछो कि ये देश तुम्हारे लिए क्या करेगा, ये प्रश्न पूछो कि तुम इस देश के लिए क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हो। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने आप से पूछते रहना चाहिए कि मैं गुरु के लिए और इस संप्रदाय के लिए क्या योगदान कर रहा हूं, मेरी तरफ से क्या योगदान है। और सबसे पहला योगदान, ये ध्यान में रखिए, सबसे पहला योगदान है हमारा उदाहरण। हमारा उदाहरण है सबसे पहला योगदान। कि यदि हम शारीरिक रूप से ये सत्संग कार्यक्रम में आएंगे तो ये सबसे पहला योगदान है कि लोग जब देखेंगे, अरे ये सारे जो भक्त हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, दीक्षित हैं, ये देखिए ये आगे आकर बैठकर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, सेवा में आगे आगे रहते हैं, तो उनको प्रेरणा मिलती है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी कहा कि ये सारी जो पुस्तकें हैं मेरी और ये सारी जो साधना भक्ति की पद्धति है, ये सबसे पहले मेरे शिष्यों के लिए। बाहर के लोग यदि करें या न करें, प्रभुपाद ने कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यदि वो करें तो बहुत अच्छा, परंतु जो शरणागत हुए मेरे शिष्य, ये श्रवण कीर्तन साधना भक्ति भक्तों का संग, ये सब उनके लिए सबसे पहले। तो हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहला उत्तरदायित्व तो हमारा, ये जो यहां पर नियम बताया है महाराज ने, ये है कि सत्संग में हम एक्टिवली पार्टिसिपेशन दें अपना। और छठा है स्ट्रांग फेथ इन इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। कि क्या हम जिसे दीक्षा ले रहे हैं उनको ठीक प्रकार से जानते हैं कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं केवल हमें जबरदस्ती, या क्योंकि सभी लोग यहां पर इन गुरु से ले रहे हैं तो हमें भी यदि यहां पर कुछ अपना फायदा कराना है। कई लोग ये सोचते हैं कि राधानाथ महाराज के शिष्य जो हैं बड़े बड़े लोग हैं, तो यदि राधानाथ महाराज के मैं भी शिष्यों के गुट में आ जाऊंगा तो मेरी भी अच्छी नौकरी कहीं पे लग जाएगी, या मेरा बिजनेस कांटेक्ट मिलेगा। कई बार लोग इस धारणा से भी राधानाथ महाराज से दीक्षा लेते हैं। तो गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है हमारी, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम अपने, जैसे वो हमने उदाहरण दिया कि हमारी उत्कंठा है कि हम इन गुरु से दीक्षा लें। तो इस प्रकार से श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति। हम्बल सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स वैष्णव, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा महाराज को तकलीफ क्या चीज देती है, जब महाराज के शिष्य आपस में झगड़ा करते हैं। इससे अधिक महाराज को तकलीफ देने वाली बात और कोई नहीं। जो महाराज के शिष्य आपस में झगड़ा करें, महाराज के शिष्य आपस में मैत्री व्यवहार न रख पाए। और ये शुरू कहां से होती है, ये सारी बातें शुरू कहां से होती है, जब हम एक दूसरे की खोट या दोष निकालते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग। जब हम खोट निकालना प्रारंभ करते हैं, वहां से आगे चलकर इस हद तक बात पहुंच जाती है कि हम झगड़े पे उतर आते हैं। और कई बार गुरु बंधु वो एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन जाते हैं। तो ये जो सातवां पॉइंट है, महाराज बहुत अपने प्रवचन सुने होंगे महाराज के, हम्बल सर्विस के ऊपर महाराज हर प्रवचन में नम्रता के ऊपर, भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके विषय में महाराज कितना जोर देते हैं। और ये हमें ऐसा नहीं कि केवल हम बाहर से दिखाने के लिए ऐसा व्यवहार करें कि जब मंदिर में आए हैं भक्तों के साथ तो फिर बाहर से दिखाने के लिए कि हाँ आप प्रभु हैं मैं दास हूं। तो मैं दास हूं आप प्रभु हैं, परंतु जैसे ही हम वो प्रभु चले गए तो उसके बाद में उनके दोषों को निकालने लगे और कहने लगे कि ये ऐसा है ये ऐसा है, इसने ये किया उसने वो किया। तो बाकी तो नियम, जैसे यहां पर एक बार उसी बात को और जोर देकर कहा गया है, द कैंडिडेट मस्ट अटेंड ऑल संडे फीस्ट प्रोग्राम, हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सम अदर रिस्पॉन्स सेंटर एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेवल टू राधा गोपीनाथ मंदिर एवरी संडे, उसका अर्थ है हमारे लिए यहां पर यहां का जो केंद्र है। और अ सिग्निफिकेंट अटेंडेंस इज एक्सपेक्टेड फॉर फेस्टिवल्स यात्रा एक्सेट्रा टू इस्टैब्लिश अ स्ट्रांग रैपो विद स्पिरिचुअल मास्टर द डीटीज एंड द डिवोटीज। की यात्रा है, कोई बहुत बड़े उत्सव हैं, इनमें भाग लेते रहना जिससे हम जो उनके शिष्य हैं या वो स्वयं उनसे एक रिश्ता स्थापित कर पाए। तो ये सारे जो नियम हैं, और मैं यदि आप लोगों ने वो महाराज का लंदन का वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार दिखाया था यहां पर, कितनों ने देखा था वो? तो इसमें मैं केवल आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, केवल इतना ही दिखाऊंगा कि देखिए महाराज की शारीरिक स्थिति क्या है, जिसे कुछ गंभीरता आए